मुख्य समाचारों में, अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा घोषणा कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण करने का किया है फैसला। टॉप एंड में डार्विन बमबारी की 80 वर्षगांठ पर एक समारोह, और ऑस्ट्रेलिया ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में श्रीलंका को हराया। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। आज नॉर्दर्न टेरिटरी में एक विशेष समारोह में डार्विन बमबारी की 80 वर्षगांठ मनाई गई। 19 फरवरी 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दो में से पहली छापेमारी में जापानी विमानों का एक स्क्वाड्रन डार्विन पर उतरा था। इसमें कम से कम 235 लोग मारे गए और 400 से अधिक घायल हो गए। इसके साथ ही 30 विमान नष्ट हुए थे और 11 जहाज डूब गए थे। इस समारोह में श्रद्धांजलि देने वालों में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और विपक्षी नेता एंथनी एल्बनीज़ी भी मौजूद थे। श्री मॉरिसन ने याद किया,
इन दिस प्लेस ऑफ ग्रेट वायलेंस 80 इयर्स अगो मोर रिसेंटली आई स्टूड हियर with the Prime Minister of Japan, Prime Minister Abe, so it could become a place of reconciliation. There was a quietness and stillness that day. I wish all who had been in Darwin in 1942 and 1943 could have been there with us.
और श्री एल्बनीज़ी ने डार्विन के साहस और संकल्प की बात की।
Over Japan's nearly two-year campaign and 64 air raids, Darwin responded with courage and resolve. They withstood an empire, and as they did, they showed the rest of Australia something important. That even if our place in the world changed, our character as a people should not.
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन का कहना है कि रूसी सेना आने वाले दिनों में यूक्रेन पर हमला करने का इरादा रखती है और राजधानी कीव खतरे में है। उनका कहना है कि रूसी समर्थित अलगाववादी यूक्रेन के हमलों के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं और इसका कोई सबूत नहीं है। इस बीच उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कहना है कि अमरीका रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट्स पर हाल के साइबर हमलों के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराने की मांग कर रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन का कहना है कि इस बढ़ते संकट को समाप्त करने के लिए रूस को युद्ध और कूटनीति में क्या चुनना है, उसे इस बात का निर्णय लेने का समय है। और राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेनी लोगों का समर्थन करने की बात कही।
The West is united and resolved. We're ready to impose severe sanctions on Russia if it further invades Ukraine. But I say again, Russia can still choose diplomacy. It is not too late to de-escalate and return to the negotiating table.
श्री बाइडेन का कहना है कि पश्चिमी सहयोगी ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि यदि रूस आक्रमण करने के लिए बढ़ता है तो वो उस आक्रमण की कीमत चुकाए। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि यूक्रेन के खिलाफ हिंसा की धमकी अस्वीकार्य और अकारण है। उन्होंने जो बाइडेन की टिप्पणी का समर्थन किया। फेडरल सरकार यूक्रेन में ऑस्ट्रेलियन लोगों को चेतावनी जारी कर रही है कि रूसी आक्रमण अपरिहार्य और आसन्न है, लेकिन साथ ही उसका कहना है कि उम्मीद है कि ये घटना नहीं होगी। श्री मॉरिसन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ खड़े होने और रूस की रणनीति का विरोध करने के लिए तैयार है।
There hasn't been any withdrawal of Russian troops from the borders. The pretense is being sought for an invasion. There is no pretense for an invasion into Ukraine. There is no justification for it.
विक्टोरिया में नाइट क्लब्स और मनोरंजन स्थल पर डांस फ्लोर पर लोग सामान्य रूप से राज्य के आसान होते प्रतिबंधों के तहत वापस लौट आए हैं। हॉस्पिटैलिटी व्यवसायों में घनत्व की सीमा को भी समाप्त कर दिया गया था और खुदरा ग्राहकों और स्कूलों में अब चेक इन की आवश्यकता नहीं है। न्यू साउथ वेल्स और एसीटी में लोगों के लिए वीकेंड डांस फ्लोर फिर से खुले हैं। अगले सप्ताह विक्टोरिया में कोविड-19 नियम और आसान हो सकते हैं। सोमवार को सीमा फिर से खुल रही है, तो पुलिस मंत्री लिसा लेविन का कहना है कि गैर टीकाकृत यात्री मेलबर्न की नई संगरोध सुविधा में जाएंगे.
You know, the expectation certainly from health is that with the reduction in quarantine times from 14 to 7, we may see more people take that opportunity to return and quarantine here for 7 days if they're unvaccinated.
Victoria में 6,280 नए COVID-19 मामले और 20 मौतों को दर्ज किया गया. New South Wales में 7,615 नए मामले और 12 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है. 1200 से अधिक COVID-19 मरीज अस्पताल में हैं. न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर डोमिनिक पेरेटे ने शुक्रवार को प्रतिबंधों में ढील दी और अधिकांश सिटिंग में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता अगले शुक्रवार को कम हो जाएगी. न्यू साउथ वेल्स हेल्थ के डॉक्टर जॉन हॉल ने निवासियों को याद दिलाया.
From Friday the 25th of February, masks will only be mandated on public transport, planes, at airports, hospitals, aged and disability care homes, corrections facilities and indoor music festivals with more than 1,000 people.
Queensland ne 4,919 naye COVID-19 mamle aur 10 mauton ko darj kiya hai. Queensland ke mukhya swasthya adhikari Dr. John Gerrard ka kehna hai ki schoolon ke phir se khulne ke baad se mamlon mein koi gambhir uchhal nahi aaya hai.
Cases have slowly decreased and reached a plateau. And we are likely to reach a plateau of cases in the next few days or weeks. The important message here is that even though the peak is over, we are expecting a continued transmission going forward. The virus is not going to go away. We don't expect it to.
रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के बाद एयर इंडिया ने कहा कि वो अगले सप्ताह भारत से यूक्रेन के बीच 3 उड़ानें संचालित करेगी. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने द्विपक्षीय एयर बबल समझौते के तहत भारत और यूक्रेन के बीच संचालित होने वाली उड़ानों की संख्या पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है ताकि पूर्वी यूरोपीय देश में रुके हुए भारतीय वापस लौट सकें. और भारत में कोरोना वायरस के 22,270 नए मामले दर्ज किए गए हैं. पॉजिटिविटी रेट 2% के नीचे पहुंच गया है. और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की. ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 71 सेंट और भारत के 53.59 रुपए के बराबर है. खेल समाचारों में क्रिकेट में ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने शुक्रवार को एमसीजी में श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टी20 में भीड़ की कमी के बारे में टिप्पणी की है. एमसीजी में केवल 13,000 दर्शक मौजूद थे जो टी20 के लिए सबसे कम उपस्थिति थी. कल शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका पर चौथी सीधी टी20 जीत हासिल की और ये इस सीरीज की सबसे बड़ी उपलब्धि रही. मैक्सवेल का कहना है कि उन्हें संदेह है कि छोटी भीड़ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की सीमित रुचि के बजाय कोरोना वायरस चिंताओं से संबंधित है. और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी रविवार को पर्थ में मुख्यतः धूप रहेगी. अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस. एडिलेड में आंशिक रूप से बादल. अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री. मेलबर्न में मुख्यतः धूप रहेगी. अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री. होबार्ट में आंशिक रूप से बादल. अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री. कैनबरा में तूफान की संभावना. अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री. सिडनी में आंशिक रूप से बादल. अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री. ब्रिस्बेन में एक दो बौछारें. अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम 21 डिग्री. और डार्विन में एक दो बौछारें. तूफान की संभावना. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस. और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए.